नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय के सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।